नमस्कार। आज हम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य के एक बहुत ही महत्वपूर्ण उद्बोधन पर बात करने वाले हैं। शीर्षक है, क्षुद्रता छोड़ें, महानता के पथ पर चलें। इसका जो मूल भाव है वो है कि जीवन में ये जो छोटी छोटी चीजें हैं, छोटी सोच, इच्छाएं, इनसे ऊपर उठें और बड़े आदर्शों की तरफ, बड़े लक्ष्यों की तरफ बढ़ें।
बिल्कुल। पूज्य गुरुदेव ये भी कहते हैं कि हम एक असाधारण समय में जी रहे हैं। वो इसे युग परिवर्तन की वेला कहते हैं। पर इसका क्या मतलब है? क्या ये सिर्फ बाहरी दुनिया का बदलाव है या कुछ और?
हाँ, ये अच्छा सवाल है। देखिए, पूज्य गुरुदेव इसे एक विशेष संध्या काल मानते हैं, मतलब एक संक्रमण का समय। ये सिर्फ बाहरी घटनाओं का समय नहीं है, बल्कि एक ऐसा दौर है जब मानवता, पूरी दुनिया एक बड़े बदलाव के मुहाने पर है, आंतरिक भी और बाहरी भी।
अच्छा।
और उनका मानना है कि हम में से हर एक को, मतलब प्रत्येक व्यक्ति को, ईश्वर ने इस बदलाव में एक भूमिका निभाने के लिए भेजा है, सिर्फ यूं ही जीने के लिए नहीं। तो ये एक तरह की जिम्मेदारी हुई, सिर्फ अपनी नहीं बल्कि पूरे समाज की, दुनिया की।
हाँ हाँ, बिल्कुल। वो इसे एक आपत्ति काल जैसा भी कहते हैं, मतलब ऐसे समय में सामान्य कर्तव्यों से ऊपर उठना पड़ता है, विशेष दायित्व निभाने होते हैं।
जैसे?
जैसे वो उदाहरण देते हैं ना कि राम के लिए रीच वानर आए, कृष्ण के लिए ग्वालबाल थे, या गांधी जी के साथ सत्याग्रही जुड़े।
हाँ हाँ।
तो वैसे ही इस युग परिवर्तन में हर किसी को अपनी एक विशेष भूमिका समझनी होगी। और सबसे अहम बात यह है, पूज्य गुरुदेव कहते हैं ये परिवर्तन बाहर से नहीं आएगा, ये हम सबके अंदर से शुरू होगा, वो क्षुद्रता छोड़ने से। जिम्मेदारी व्यक्ति पर है।
तो फिर इस रास्ते पर, महानता के पथ पर, पहला कदम क्या होगा? कहाँ से शुरू करें?
देखिए, पहला और सबसे जरूरी कदम है अपनी मानसिकता, अपनी सोच को बदलना। पूज्य गुरुदेव के कहते हैं कि ये जो दुनिया के आकर्षण हैं, जिन्हें वो मृग तृष्णा कहते हैं।
हाँ, मृग तृष्णा।
उसमें भटकने के बजाय ईश्वर का आश्रय लेना होगा। अपनी जो इच्छाएं हैं, महत्वाकांक्षाएं हैं, उनकी दिशा बदलनी होगी। उन्हें वासना, तृष्णा और वो जो झूठा अहंकार होता है ना, बड़प्पन का भाव, उससे हटाकर श्रेष्ठता और महान आदर्शों से जोड़ना होगा। असल में क्षुद्रता का मतलब छोटी सोच और स्वार्थ का त्याग करना, यही महानता की ओर पहला कदम है।
ये बात तो बिल्कुल सही है, पर इसे करना, अमल में लाना, ये मन और इंद्रियां, इनको वश में करना तो बहुत मुश्किल है। पूज्य गुरुदेव इस बारे में क्या कहते हैं?
बिल्कुल सही सवाल पूछा आपने। पूज्य गुरुदेव मन और इंद्रियों की गुलामी को ही तो असली भव बंधन कहते हैं। मतलब दुनिया की चीजों और इच्छाओं में हम ऐसे उलझ जाते हैं कि हमारी असली आजादी, हमारा जो सुकून है, वो कहीं खो जाता है।
अच्छा।
इसी से मुक्ति पानी है। वो गिब्बन बंदर का उदाहरण देते हैं ना।
हाँ, वो चने वाला।
हाँ, जो मुट्ठी भर चने के लालच में पकड़ा जाता है। क्यों? क्योंकि वो अपनी मुट्ठी खोल नहीं पाता। या फिर उस मक्खी का उदाहरण जो शहद के लालच में फंसकर मर जाती है।
ये उदाहरण तो वाकई सोचने पर मजबूर करते हैं कि कैसे एक छोटी सी पकड़, छोटा सा लालच हमें कितनी बड़ी कीमत चुकाने पर मजबूर कर देता है। तो क्या इसका मतलब ये है कि हमें सब कुछ छोड़ देना चाहिए, दुनिया से भाग जाना चाहिए?
नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। संदेश दुनिया छोड़ने का नहीं है, बल्कि अनासक्त भाव से जीने का है। मतलब अपने जो भी सांसारिक कर्तव्य हैं, जिम्मेदारियां हैं, उन्हें पूरी निष्ठा से करें, पर उनमें लिप्त ना हो, मानसिक रूप से जुड़े बिना, एक साक्षी की तरह।
जैसे कमल पानी में रहता है पर भीगता नहीं,
वैसा।
बिल्कुल
बिल्कुल वैसा ही
अनासक्त भाव। और इस मुश्किल रास्ते पर चलने के लिए ताकत कहाँ से मिलेगी? पूज्य गुरुदेव ईश्वर से साझेदारी की बात करते हैं। ये साझेदारी शब्द सुनने में थोड़ा बिजनेस जैसा लगता है, इसका आध्यात्मिक मतलब क्या है?
हाँ हाँ, ये शब्द थोड़ा चौंका सकता है, पर ये व्यापार वाली साझेदारी नहीं है, ये है समर्पण वाली साझेदारी।
समर्पण वाली।
हाँ, जैसे गंगा नदी हिमालय से जुड़कर कभी नहीं सूखती, हमेशा बहती रहती है, वैसे ही ईश्वर से जुड़ने पर जीवन में शक्ति, मार्गदर्शन, इनका अभाव नहीं रहता। पर ये जुड़ाव कैसा हो, ये महत्वपूर्ण है।
कैसा?
ये जुड़ाव होना चाहिए जैसे कठपुतली का बाजीगर से होता है, या पतंग का उड़ाने वाले से, या फिर बांसुरी का वादक से। मतलब पूर्ण समर्पण। हम ईश्वर पर हुकूमत नहीं चला सकते, ना ही उनसे सिर्फ फरमाइशें कर सकते हैं कि ये दे दो वो दे दो। हमें उनके हाथ का यंत्र बनना होगा, उनकी इच्छा से चलना होगा।
ये जो समर्पण वाली बात है, कठपुतली जैसा बनना, आज का जो समय है इतना व्यक्तिवादी, जहां हर कोई अपनी पहचान, अपनी स्वतंत्रता चाहता है, ये थोड़ा विरोधाभासी नहीं लगता?
लग सकता है। हाँ, ये विरोधाभासी लग सकता है, पर पूज्य गुरुदेव के अनुसार सच्ची स्वतंत्रता इसी समर्पण में है, जब हम अपनी छोटी मैं को, अपने अहंकार को, ईश्वर की बड़ी योजना में समर्पित कर देते हैं, तब हम अपनी सीमित इच्छाओं के बंधन से आजाद हो जाते हैं और असीम संभावनाओं से जुड़ जाते हैं।
अच्छा,
और यहीं पर उनका एक और बहुत महत्वपूर्ण सूत्र आता है। वो कहते हैं, क्या करें इससे ज्यादा जरूरी है क्या बने।
हाँ, ये बात मुझे भी बहुत दिलचस्प लगी थी, मतलब कर्म से पहले कर्ता को सुधारना।
बिल्कुल सही, जैसे कोयला तपकर हीरा बनता है ना, या कच्ची धातु को शुद्ध करके फौलाद बनाया जाता है, वैसे ही आत्म परिष्कार पर, खुद को बेहतर बनाने पर जोर है। व्यक्तित्व में एक चुंबकत्व पैदा करना होगा। जब व्यक्ति अंदर से मजबूत होता है, परिष्कृत होता है, तो समाज सेवा हो या युग निर्माण का काम, वो अपने आप प्रभावशाली हो जाता है।
गुरु अर्जुन देव जी का उदाहरण कितना सटीक है। गुरु गद्दी पाने से पहले उन्होंने बर्तन मांजने जैसी सेवा से खुद को परिष्कृत किया, खुद को बनाया।
और अंत में पूज्य गुरुदेव हमें एक तरह का निमंत्रण भी दे रहे हैं, उनकी बातों से ऐसा लगता है।
हाँ बिल्कुल, वो अपने कार्य में, अपनी इस आध्यात्मिक दुकान में, जैसा वो कहते हैं, साझेदार बनने का निमंत्रण देते हैं। वो कहते हैं, जैसे मैंने अपने गुरु के साथ साझेदारी की, वैसे ही आप मेरे साथ जुड़े।
कैसे जुड़े?
अपना समय, अपनी बुद्धि, अपनी प्रतिभा, इसकी पूंजी लगाएं और उस आध्यात्मिक मुनाफे में हिस्सेदार बने जिसने मुझे स्वयं धन्य किया है। ये एक तरह से उन महान साझेदारियों का आह्वान है जो इतिहास में हुई हैं। रामकृष्ण विवेकानंद, समर्थ गुरु रामदास और शिवाजी।
समझ गई। तो इस पूरी चर्चा का अगर हम सार निकालें तो वो ये है कि एक, यह युग विशेष है। दूसरा, इसमें हमारी भूमिका भी विशेष है। तीसरा, हमें अपनी छोटी इच्छाओं, संकीर्ण सोच यानी क्षुद्रता को त्यागना है और महानता के मार्ग पर चलना है। चौथा, स्वयं को परिष्कृत करना है, क्या बने पर ध्यान देना है। और पांचवा, ईश्वर या किसी उच्च उद्देश्य के साथ समर्पण वाली साझेदारी में जीना है।
एकदम सही कहा आपने, बिल्कुल यही सार है। ये केवल बाहर के काम या कर्मकांड की बात नहीं है, ये अंदर के बदलाव की यात्रा है, चेतना के विकास की, समर्पण की। जीवन को जीना है, पर कैसे? एक जिम्मेदार मालिक की तरह, एक खिलाड़ी की तरह या एक अभिनेता की तरह, पूरी कर्तव्य निष्ठा से, पर फल की आसक्ति के बिना, हार जीत से ऊपर उठकर, हल्के फुल्के ढंग से।
जाते जाते एक सवाल मन में आता है जो शायद हमारे श्रोताओं के मन में भी आए। पूज्य गुरुदेव जिस आध्यात्मिक मुनाफे की बात कर रहे, ईश्वर के साथ इस साझेदारी का वो वास्तविक लाभ, वो मुनाफा हमारे रोजमर्रा के जीवन में कैसा दिख सकता है, इस पर विचार किया जा सकता है।